नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कई देशों के साथ भारत के व्यापार और आवागमन समझौते से भारतीय युवाओं के लिए अनगिनत अवसर खुलेंगे। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से 18वें राष्ट्रीय रोजगार मेले को संबोधित कर रहे थे।
युवाओं को कौशल से जोड़ना और उन्हें रोजगार स्वरोजगार के अवसर देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकारी भर्तियों को भी कैसे मिशन मोड पर किया जाए, इसके लिए रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं।
देश के विभिन्न राज्यों में भी रोजगार मेले का आयोजन हुआ और चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने भारत की सशक्त अर्थव्यवस्था पर बल देते हुए कहा कि ये दुनिया की एकमात्र अर्थव्यवस्था है जिसने एक दशक में अपनी जीडीपी दोगुनी कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, ऐसे में युवाओं को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूती के साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नई दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर में श्री सिंह ने युवाओं से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देशभर में आयोजित मॉक ड्रिल में जन जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बहादुर एनसीसी कैडेटों से प्रेरणा लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 130वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग को उत्कृष्ट कैंपेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रेडियो श्रेणी में वर्ष 2025 के लिए वोटर्स एजुकेशन अवेयरनेस मीडिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देने और चुनावों के बारे में देश भर में जागरूकता फैलाने में आकाशवाणी के योगदान को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर से जुड़े कामों को लेकर प्रशासनिक उपाय सख्त कर दिए गए हैं। कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने राज्य के सभी जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सुनवाई के दौरान पेश की गई एसआईआर से संबंधित रिपोर्ट और दस्तावेज को उसी दिन चुनाव आयोग के ईसीआई नेट पोर्टल पर अपलोड करें। निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी लापरवाही से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश अराजकता, असुरक्षा और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का सामना कर रहा है। नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता के दौरान ऑडियो संदेश में शेख हसीना ने कहा कि वर्तमान समय में बांग्लादेश अपने इतिहास के सबसे खतरनाक दौर में है। उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा विपक्षी दलों को डराने धमकाना बंद करने की मांग की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से पिछले वर्ष की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने का भी आग्रह किया। उन्होंने बांग्लादेश के नागरिकों से लोकतंत्र बहाल करने के लिए जन समर्थन की अपील की।
देश को चौतरफा आतंक के माहौल में धकेल दिया गया है, लोकतंत्र को निर्वासन पर भेज दिया गया है और मानवाधिकार अंधकार में है। पत्रकारिता की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया है। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा, यातना और यौन उत्पीड़न लगातार बढ़ रहे हैं। इस गंभीर घड़ी में पूरे देश को एकजुट होना होगा और महान मुक्ति संग्राम के आदर्शों से मार्गदर्शन लेना होगा।
बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले चुनावी गठबंधन में कल एक नई पार्टी शामिल हो गई। एक इस्लामिक पार्टी के गठबंधन छोड़ने की घोषणा के एक हफ्ते बाद बांग्लादेश लेबर पार्टी बीएलपी के गठबंधन दलों की संख्या 11 हो गई है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली को 110 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 16वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।